मेरे अजीज दोस्तों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 26 अगस्त 2016 है, दिन है शुक्रवार, और आज के इस afias.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही साथ मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन नौ नौजवान साथियों का भी, जिन्होंने एकेडमी की अगले साल फरवरी मार्च में होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं जीनत शिराजी, आप झांसी उत्तर प्रदेश से हैं, मोहिनी रावत लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं, निशांत कुमार मैसूर कर्नाटक से, नवनीत कुमार दिल्ली से, अक्षय मुदगल संभल से, अनुराग मिश्रा झांसी उत्तर प्रदेश से, आशुतोष राव कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, लवी गुप्ता मुरादाबाद से और हिमांशु पांडे मुंगेली छत्तीसगढ़ से। तो जीनत, मोहिनी, निशांत, नवनीत, अक्षय, अनुराग, आशुतोष, लवी और हिमांशु, आप सभी साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 26 अगस्त है और अगले महीने के 25 अगस्त को हम सब, यानी कि जो फिफ्थ बैच के स्टूडेंट हैं, उन सब के साथ एकेडमी की पूरी टीम होगी और क्लासेज शुरू हो चुकी होंगी। तो दोस्तों, खासकर जो फिफ्थ बैच के स्टूडेंट हैं, उन सब से मैं कहना चाहूंगा कि अब वो अपना काउंट डाउन शुरू कर दें। काउंट डाउन कहने का मतलब है कि उल्टी गिनती शुरू कर दें। अभी तक वो चाहे जिस तरह से भी गिन रहे हों, अब वो गिने 30 दिन बाकी रह गए, 29 दिन बाकी रह गए, 28 दिन बाकी रह गए। इस उल्टी गिनती का इंपॉर्टेंस इसमें होता है दोस्तों कि जैसे जैसे आपको ये पता लगता जाता है कि दिन कम हो रहे हैं, वैसे वैसे समय की वैल्यू आपके दिमाग में बढ़ती चली जाती है और आप अपने आप को उसके लिए तैयार करने लगते हैं। तो दोस्तों, अब जबकि मात्र 29 दिन बाकी रह गए हैं, मैं एक बार फॉर्मल तौर पर फिफ्थ बैच के अपने सभी प्यारे नौजवान साथियों का एकेडमी की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, आज शुक्रवार है तो मुझे कुछ सूचनाएं देनी होती हैं। सूचना यह है दोस्तों कि कल और परसों जो डेली ऑडियो गाइडेंस है वो नहीं आएगा, लेकिन कल आपको जो प्रेस क्लिपिंग्स है वो एज इट इज मिलती रहेंगी। साथ ही प्रेस क्लिपिंग के साथ ही आपको योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन के एक एक आर्टिकल मिलेंगे। टोटल 4 आर्टिकल्स आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए, जिसमें 2 आर्टिकल इंग्लिश के होंगे और 2 आर्टिकल हिंदी के होंगे, योजना और कुरुक्षेत्र दोनों के। नो डाउट कि हमारे जो फर्स्ट बैच से लेकर फोर्थ बैच तक के स्टूडेंट रहे हैं, उनके पास स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाएगा। और इस बार के स्पेशल ऑडियो गाइडेंस का दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने विषय रखा है, अभी जो 7 अगस्त को सिविल सर्विस के जो प्री के एग्जाम हुए हैं उसकी एनालिसिस पर आधारित है। इसे 2 भागों में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट अभी कल आपको भेजा जाएगा और उसका जो सेकेंड पार्ट होगा वो कमिंग वीक में आपको अवेलेबल कराया जाएगा। और इसके साथ ही साथ सैटरडे को जो एक वीकली क्वेश्चन होता है, वो वीकली क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा ताकि आप उस पर प्रैक्टिस कर सके। मित्रों, मैं जानता हूं कि वीकली क्वेश्चंस के बारे में लगातार आप लोगों के मेल आ रहे हैं और जो आप लोगों की डिमांड है कि इसके बारे में कुछ हिंट्स दिए जाएं, वो बहुत जेन्यून है। मैं आप लोगों की जरूरत को समझ सकता हूं और उसका पूरा सम्मान भी करता हूं, लेकिन उसके साथ जो मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो महसूस कर रहा हूं फ्रेंड्स, वो ये कि खासकर जो डेली ऑडियो गाइडेंस है, अगर उसे हम बहुत ज्यादा टुकड़ों में विभाजित कर दें तो उसका एक जो रिदम है वो रिदम बहुत बाधित हो जाता है, उसकी जो लय है वो लय टूट जाती है। और फिर ऐसा भी लगने लगता है जैसे कि सारी चीजें थोड़ी सी अधूरी अधूरी सी हो रही हैं, रह रही हैं। जहां तक न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स और न्यूज का सवाल है, वो तो लगभग लगभग एक ही फ्रेम में कंटिन्यू कर जाते हैं, लेकिन बाकी के लिए फिर टुकड़े में समय निकाल कर बता पाना, सच पूछे तो व्यावहारिक रूप से बहुत मुश्किल हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि मैं कितने दिनों से इस कोशिश में लगा हुआ हूं कि मैं अपने सभी प्रिय स्टूडेंट्स को, जो 7 अगस्त को एग्जाम हुआ है प्री का, उसके पेपर की एनालिसिस प्रोवाइड कर दूं, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो संभव नहीं हो पा रहा है। कभी थोड़ी सी बात हो पाती है, इसके बाद कुछ दिनों तक फिर गैप आ जाता है, फिर वो थोड़ी सी बात हो पाती है। तो इस तरीके से जो पूरा का पूरा जो वक्त है वो अगर बहुत ज्यादा स्केटर्ड हो जाता है, बिखर जाता है, तो थोड़ी सी परेशानी महसूस होती है, न केवल आपको सुनने में ही बल्कि मुझे रिकॉर्ड करने में भी। दिमाग पर उतना कंट्रोल रख करके और फिर शिफ्ट करके और दूसरे उस पर जाना थोड़ी सी एक नई तरह की चुनौती तो पेश करती है, लेकिन सवाल मुझे चुनौतियों से उतना भय लगने का नहीं है, उनसे मैं भयभीत लकीली नहीं होता हूं। सवाल यह है कि आपके लिए वो चीज कितनी उपयोगी हो पाएंगी, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। तो मित्रों, मैं खासकर इस बंद में थोड़ा सा पड़ा हुआ हूं, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों की इस जरूरत को पूरी कर सकूं, और यदि मैं ऐसा कर सका तो वास्तव में, वाकई में मुझे बेहद खुशी होगी। आज मैं आप लोगों के सामने एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा, उस बारे में भी मुझे बहुत से मेल मिले हैं। मित्रों, अभी एक यूपीएससी ने कुछ समय पहले एक कमेटी बनाई थी, एक आईएएस ऑफिसर्स थे बासवान जी, जो छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस ऑफिसर थे, हमारे एक सेंट्रल गवर्नमेंट में वो एजुकेशन सेक्रेटरी भी रहे, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी जिसको यूपीएससी का जो अभी का जो एग्जाम है उसके बारे में रिकमेंडेशन के लिए कहा गया था। उनको कुछ काम दिए गए थे कि आप इन इन पॉइंट्स पर रिकमेंड कीजिए। तो बासवान समिति ने 11 अगस्त को अपनी जो रिकमेंडेशन है, जो अपनी रिपोर्ट है कह लीजिए, वो सौंप दी है। अब उस रिपोर्ट पर अब बातचीत होगी, अब क्योंकि रिपोर्ट सौंप देना एक अलग बात है जो आयोग ने अपनी तरफ से दे दी है, स्वाभाविक है कि अब उसे स्वीकार करना न करना ये सरकार के हाथ में। याद रखिए कि सीधे सीधे यूपीएससी के हाथ में भी नहीं है कि यूपीएससी ही इनको ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेगी, वो सरकार के हाथ में है। सच पूछे तो पब्लिकली रिपोर्ट की बातें सामने नहीं आई हैं, लेकिन जो थोड़ी बहुत चीजें जो अखबारों में पढ़ने को मिल रही हैं उसमें एक दो बातें आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि आयोग ने रिकमेंड किया है कि जो एज है, जो मैक्सिमम एज है, जो अभी आप देखते हैं बढ़ाते बढ़ाते जनरल के लिए 32 इयर्स हो गई है, उसको रिड्यूस करके 26 इयर्स के आसपास कर दिया जाए। यहां तक कि जो अटेम्प्ट भी बढ़ते बढ़ते अब इतने हो गए हैं उसको भी रिड्यूस कर दिया जाए, 3 अटेम्प्ट्स तक 4 अटेम्प्ट्स तक कर दिए जाएं। सब्जेक्ट के बारे में भी कुछ ऐसे ही है कि ऑप्शनल पेपर रहे ना रहे, क्या क्या इस तरह के चेंजेस के बारे में उन्होंने रिकमेंड किए हैं, ऐसा पढ़ने में आ रहा है। क्योंकि पब्लिकली न तो आयोग ने इसके बारे में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है और न ही सरकार ने अभी इसके बारे में कोई घोषणा की है। तो स्वाभाविक है कि आप सब जो अभी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनके मन में बहुत संदेह पैदा हो गए हैं कि कहीं हमारे अटेम्प्ट्स तो कम नहीं हो जाएंगे, कहीं एज लिमिट तो हमारी कम नहीं हो जाएगी। मित्रों, होगी नहीं होगी इसके बारे में तो अभी कुछ भी कह पाना संभव नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही व्यावहारिक बात बताने जा रहा हूं और हो सकता है कि इससे आपका द्वंद्व थोड़ा सा कम हो सके। और वो ये कि बाय द वे, यदि सरकार इन सिफारिशों को मानती भी है, मान लीजिए वो एज लिमिट 32 से घटाकर 28 या 26 ही मान लीजिए कर देती है, तो ये मान करके चलिए कि वो अचानक नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि वो घोषणा कर देगी और अगले साल से उसकी एज लिमिट 26 हो जाएगी, क्योंकि देखिए बढ़ा देना तो आसान होता है, 28 की आप 30 कर दीजिए, 30 की 32 कर दीजिए, वो एक आसान काम है क्योंकि उससे किसी को नुकसान नहीं होता। लेकिन यदि आप एज लिमिट को अचानक कम कर देते हैं तो बट नेचुरल है कि इससे एक बहुत बड़े वर्ग को नुकसान हो सकता है, और वो काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए कि 32 ईयर्स की एज अभी आप लेकर चल रहे हैं, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी और आप अपने अटेम्प्ट को देख रहे हैं, बीच बीच में आप अटेम्प्ट नहीं दे रहे हैं क्योंकि अभी आपको लगता है कि एज है, तो अभी आप हायर लेवल वाले एज ग्रुप को लेकर चल रहे थे और अचानक जब आपको फिर कम लेवल वाले एज ग्रुप में आना पड़ेगा तो अब उसकी भरपाई तो आप नहीं कर सकेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। बट नेचुरली कि ऐसी स्थिति में सरकार आपका ध्यान रखते हुए धीरे धीरे इसे करेगी, मतलब आपको उसको मेकअप करने के लिए पर्याप्त समय देगी। तो पहली बात तो यह कि इसको लेकर के बहुत ज्यादा परेशान ना हो कि इससे कोई आपका बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। दूसरी बात, लेकिन मैं एक व्यावहारिक सलाह भी देना चाहूंगा। व्यावहारिक सलाह ये कि अब जो भी स्टूडेंट, जो एकदम नए स्टूडेंट सिविल सर्विस की तैयारी में लग रहे हैं, वे फिलहाल अब वो 32 इयर्स की हायर एज लिमिट को लेकर न चलें। उन्हें कम से कम दिमाग में ये रखना चाहिए कि अब ये एज लिमिट घट करके 26-28 ही हो जाएगी, भले ही वो ना हो, बात अलग है। तो वो अपनी प्रिपरेशन को प्रायोरिटी के आधार पर शुरू से ही 26 इयर्स मान करके अंजाम दे। और वैसे भी दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये थोड़ी सी जोश खरोश वाला काम भी है। आप जितने जोश खरोश के साथ तैयारी में लगेंगे, परिणाम उतने अच्छे मिलते हैं। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि आप जैसे ही कॉलेज से निकलते हैं वैसे ही सिविल सर्विस की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि उस समय एक जोश होता है, यंग एज होती है। यंग एज तो खैर आपके 28-30 साल तक भी रहेगी, लेकिन उस समय जज्बा अलग होता है, जिम्मेदारियां उतनी ज्यादा नहीं होती हैं, अगर होती भी हैं तो उतनी ज्यादा महसूस नहीं होती हैं। जैसे जैसे उम्र अधिक होती जाती है, जिम्मेदारियों का एहसास होने लगता है, तनाव बढ़ने लगते हैं, तो पढ़ने में भी एक तरह से आप कह लीजिए कि थोड़ी सी ढिलाई आने लगती है। इसलिए मेरी व्यावहारिक सलाह, खासकर बासवान समिति के रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए, यही होगी कि आप लोगों को अब बहुत ज़्यादा अपना समय जाया नहीं करना चाहिए, खराब नहीं करना चाहिए, और अपनी तैयारी में पूरी तरह से लग जाना चाहिए। तो मित्रों, अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर। कल के AIR न्यूज में 2-3 खबरें हैं मित्रों। एक तो कश्मीर समस्या को लेकर के आप देख ही रहे हैं कि अभी हमारे होम मिनिस्टर वहां गए और कल उन्होंने अपनी बात रखी, वहां चीफ मिनिस्टर महबूबा जी ने भी अपनी बात रखी, और उन बात के केंद्र में आप दो चीजें बहुत स्पष्ट रूप से देख रहे हैं जो आपके कश्मीर समस्या के समाधान के केंद्र में होना चाहिए। वो तो दो क्या है? पहला पॉइंट तो यह है मित्रों कि जो कश्मीर है, कश्मीर में जो समस्या है, याद रखिए ये भारत की समस्या है। ये बात अलग है कि इस समस्या को बढ़ाने में, जन्म देने में और लगातार इसको बढ़ाते चले जाने में पाकिस्तान का हाथ है। वहां से जो कश्मीर, जो आतंकवादी जो लोग हैं वो इन समस्याओं को अंजाम दे रहे हैं। मुफ्ती जी का आपने बयान पढ़ा कि केवल 5% लोग केवल इस तरह के खुराफात कर रहे हैं, अदरवाइज तो 95% लोग बड़े चैन के साथ ही, शांति के साथ ही रहना चाह रहे हैं। उन्होंने ये बात कही और ये सच भी है। तो मित्रों, जो पहला पॉइंट है वो ये है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और जो कश्मीर के लोग हैं वो भारतीय ही हैं, है ना। भले ही वहां चाहे अभी जो भी स्थिति हो गई हो, तो हम ये नहीं मान करके चल सकते कि कश्मीर के लोग कोई पाकिस्तान में जाना चाह रहे हैं या पाकिस्तान प्रेमी हैं या राष्ट्र विरोधी हैं, भारत के विरोधी हैं। ऐसी धारणा बिल्कुल भी मन में नहीं लाई जानी चाहिए। यह मैं आपको समस्या के समाधान की दृष्टि से बता रहा हूं। कश्मीर भी उसी तरह से हमारे देश का हिस्सा जैसे कोई भी दूसरा राज्य। तो अगर किसी दूसरे राज्य में किसी तरह की कोई समस्या पैदा होती है तो उसके हल क्या होंगे? तो एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, जो कि हिंदुस्तान का है, जो हल हो सकता है, जो निकल सकता है, वो याद रखिए कि थ्रू डायलॉग ही हो सकता है, बातचीत के आधार पर ही निकल सकता है। और यही डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी है जिसे हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहते हैं। जैसे अभी आपने मणिपुर में देखा, और मेरा शिरोम उर्मिला जी का, कि उन्होंने अपना अनशन खत्म किया, इतने पुराना अनशन खत्म किया, और वो कहे कि अब मैं चुनाव लड़ूंगी और उसके माध्यम से समस्या का हल करना चाहूंगी। तो वहां अभी हमारी सरकार है, राज्य की सरकार है, भारत की, भारत का वो राज्य है, और सरकार वहां के प्रशासन को देख रही है, चला रही है। तो वो तो कश्मीर के लोगों की ही सरकार है ना, तो अपनी ही सरकार से वो बातचीत करेंगे। तो पहला आपके दिमाग में ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी जो बात है, अब आपने बहुत क्लियर कट ये देख लिया है कि भारत ने स्पष्ट कह दिया कि अब कश्मीर इशू पर कोई बातचीत नहीं होगी। अगर इशू पर किसी की बातचीत होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगी, जो पाकिस्तान के द्वारा अधिकृत कर लिया गया है उस पर बात होगी, नहीं तो बात अब बाहर से आने वाले जो आतंकवादी गतिविधियों हैं इन, केवल इन पर होगी। यह भारत का दूसरा स्ट्रांग स्टैंड है। तो इसीलिए मित्रों, कभी भी आपके दिमाग में अगर कोई सैन्य शक्ति के माध्यम से वहां के समस्या के निराकरण की बात आती है, तो आपको फिर अपनी एनालिसिस देते समय ये ध्यान में रखना होगा कि हम अपने ही लोगों के खिलाफ जो भी कदम उठाएंगे वो हम अपने ही लोगों के खिलाफ उठाने जा रहे हैं। ये बात आपके दिमाग से कभी भी गायब नहीं होनी चाहिए। जो दूसरी जो न्यूज़ थी मित्रों, वो खासकर आप देख रहे कि स्कॉर्पिन पनडुब्बी को लेकर है। स्कॉर्पिन क्या है ये थोड़ी सी कभी कभी प्री में इस तरह के प्रश्न चूंकि पूछ लिए जाते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये एक पनडुब्बी है जो खासकर नौसेना के लिए बड़े काम की और बहुत ही मॉडर्न पनडुब्बी है जिसका जो राडार पर नहीं आता है, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कहाँ क्या है। तो ये इसकी एक टेक्नोलॉजी है। इसकी कुछ सूचनाएं लीक हो गई हैं। कैसे लीक हुई ये बहुत बड़ी चिंता का कारण है। ये जो पनडुब्बी है ये फ्रांस से ली गई थी। क्या फ्रांस से लीक हुआ है? जो लीक हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया के अखबार में ये चीजें आई हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने इसमें क्या किया है, कैसे किया, अब ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है और ये अपना चलता रहेगा। हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है एज सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए कि इस मामले को आपको सुरक्षा से जोड़कर देखना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी से देखकर जोड़कर देखना चाहिए। और नेशनल सिक्योरिटी में भी स्पेशली साइबर सिक्योरिटी का हिस्सा बन जाएगा कि ये जो साइबर जो सिक्योरिटी है कैसे हम उसको इंटैक्ट रखें। भारत के लिए एक संतोष करने की बात यह है कि अभी तक इस तरह के कोई भी प्रमाण या सुराग नहीं मिल पाए हैं कि ये कहा जा सके कि ये जो भी इंफॉर्मेशन लीक हुई है ये भारत से लीक हुई है। तो ये बहुत ही संतोष की बात है। लेकिन सवाल ये है मित्रों कि चाहे लीक कहीं से भी हुई हो, अंततः जो चुनौती मिलेगी वो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को ही मिलेगी क्योंकि नेवी से जुड़ा हुआ हिस्सा है। और आप इस राष्ट्रीय सुरक्षा को इस तरीके से देखेंगे कि कुछ समय पहले हम लोग लगातार साउथ चाइना ओशन के बारे में बात कर रहे थे, दक्षिण चीन सागर के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरह से दक्षिण चीन सागर में चीन धीरे धीरे अपना प्रभुत्व बढ़ाता जा रहा है और यहां तक कि जो इंटरनेशनल जो ट्रिब्यूनल था उस तक ने जब चीन को गलत ठहराया तो चीन ने उसे मानने से साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि हम तो ऐसे ही करते रहेंगे। तो चीन के मंसूबे साफ दिखाई दे रहे हैं कि पूरे के पूरे दक्षिण चीन सागर में वो क्या करने जा रहा है। अब सवाल है कि अगर चीन उधर शक्तिशाली हो रहा है तो भारत को भी अपनी जो जल सेना है उसको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा। और ऐसे समय में अगर इस तरह की बात हो जाती है, क्योंकि ये इसके सूचनाओं के लीक होने का मतलब है, अगर वो संवेदनशील इंफॉर्मेशन लीक हो गई है तो ये मान करके चलिए कि फिर ये जो इतनी हाई टेक्नोलॉजी वाली जो पनडुब्बी है वो हमारे लिए फिर बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं रह जाएगी क्योंकि फिर ये भेद्य हो जाएगी, मतलब इसका पता लगाया जा सकेगा, तो इसकी जो रियल ताकत थी वो तो खत्म हो जाएगी। तो वो एक बहुत बड़ा सेटबैक भारत के लिए होगा। अभी देखते हैं कि इस पर किस तरह की चीजें सामने आती हैं, किस तरह के लेख सामने आते हैं, क्योंकि कहीं कहीं इसे साइबर इकोनॉमी वार का भी हिस्सा देखा जा रहा है, इकोनॉमी वार का भी हिस्सा देखा जा रहा है। इकोनॉमी वार का इस रूप में मित्रों कि भारत फ्रांस से ये पनडुब्बी खरीद रहा है। आपको मालूम है कि फ्रांस से ही कुछ और विमान भारत ने खरीदने के लिए समझौते किए हैं। जो दूसरे देश इसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि हमारे यहां से खरीदा जाए, तो अब वो कैसे अपनी चीजों को सामने लाएं और दूसरे को नीचा दिखाएं, तो उसमें भी ये होता है कि ठीक है आप कुछ इस तरह का कारनामा कर दीजिए कि उससे कि फ्रांस अपना मुंह दिखाने लायक ना रह जाए, जवाब देने लायक ना रह जाए और उससे जो सौदे हुए हैं वो कैंसिल हो जाएं और फिर वो सौदा उनके साथ हो जाए। आपको ध्यान होगा कि भारत ने जो है जो राफेल बहुउद्देशीय जो लड़ाकू विमान है वो फ्रांस से लेने की बात कही है। तो ये एक तरीके से ना साइबर इकोनॉमी वार भी है, हो सकता है। तो अब देखते हैं कि इसके बारे में क्या चीजें उभर कर सामने आती हैं। मित्रों जो तीसरी खबर थी वो खासकर जन्माष्टमी से जुड़ी हुई है। जो दही हांडी जिसे महाराष्ट्र में गोविंदा कहते हैं, ये एक उत्सव होता है और जिसमें कि मनुष्य का पिरामिड बना करके और ऊपर दही की हांडी लटका दी जाती है और फिर वो हांडी फोड़ी जाती है, वो उससे रिलेटेड घटना है। तो इस घटना से हमेशा इसमें दुर्घटनाएं होती थी, लोगों के हाथ पैर टूटते थे, क्योंकि मनुष्य का पिरामिड 40-40 फीट ऊंचा तक बनाया जाएगा तो क्या हाल होगा। तो उसको देखते हुए इस बार सुप्रीम कोर्ट ने दो बहुत महत्वपूर्ण अपने निर्णय इसके बारे में सुनाए थे। तो उन्होंने इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया था, केवल दो तीन प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट थे और छोटी छोटी चीजें थी। उसमें यह था कि एक तो इस उत्सव इस तरह के प्रोग्राम में, सांस्कृतिक उत्सव है, सांस्कृतिक प्रोग्राम है कह लीजिए, में जो भाग लेने वाले जो लोग होंगे नॉट लेस देन 18 ईयर्स, 18 साल से अधिक उम्र के ही लोग इसमें भाग लेंगे, क्योंकि बच्चों को ही सबसे ज्यादा चोट आती थी। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि जो मानवीय पिरामिड बनेगा इसकी जो ऊंचाई है वो 20 फुट से अधिक नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 20 फीट होना चाहिए। तो मित्रों ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, राज्य सरकार को इसका पालन कराना था और ये न्यूज में आया और मैंने खासकर एनडीटीवी वगैरह पर इससे रिलेटेड मैं डिस्कशन भी सुन रहा था कि बहुत से जो संस्थाएं हैं जो इस तरह के प्रोग्राम कराती हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश का पालन नहीं किया है। उन्होंने काफी इससे काफी ऊंचे ऊंचे पिरामिड्स बनाए हैं, या कुल मिलाकर के ये कह लीजिए कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जो हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है उसके इस आदेश की अवहेलना की है। फिलहाल स्थिति केवल यह है कि जो पुलिस थी उसने भी कोई कार्यवाही उस नहीं की, क्योंकि उस समय के लॉ एंड ऑर्डर्स के बारे में जो भी उन लोगों ने निर्णय लिया हो, लेकिन उनकी फोटोग्राफी की गई है और जिन संस्थाओं ने इस कानून को तोड़ा है उनके खिलाफ FIR वगैरह दर्ज की गई है। अब हम देखते हैं कि आगे क्या चीजें होती हैं। लेकिन यहां जो देखिए सबसे बड़ा जो मुद्दा उठ रहा है, इंपॉर्टेंट घटनाएं नहीं है कि उन घटनाओं से मुद्दे क्या उठेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। एक तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के दिए गए आदेश की अवहेलना, अगर सच में ऑर्गेनाइजेशन से ये करने लगे, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, किसी भी आस्था की बात हो, किसी भी जाति समुदाय क्षेत्र की बात हो, वो मायने नहीं रखती है, लेकिन अगर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की इस तरीके से खुलेआम सार्वजनिक अवहेलना होने लगेगी तो देश का जो डेमोक्रेटिक सेटअप है और यहां तक कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो क्या रह जाएगी? फिर कैसे आप चीजों को व्यवस्था देंगे, कैसे आप नियंत्रण करेंगे? और सबसे बड़ी बात है कि फिर किसकी बात मानी जाएगी, कौन सुप्रीम होगा? और यहां कोई सुप्रीम आधिपत्य की दृष्टि से सुप्रीम की बात नहीं है, लेकिन आपको एक ऐसी शक्ति तो चाहिए ना कि जो अंततः सर्वोपरि हो, अदरवाइज व्यवस्था चल ही नहीं सकती है। तो यह एक सवाल आगे चलकर उठेगा, क्योंकि आपको ध्यान होगा मित्रों के पिछले साल जनवरी में, जहां तक मुझे ख्याल आ रहा है, या इसी साल जनवरी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का जो एक कार्यक्रम होता है जिसमें सांड या बैल लड़ाए जाते हैं, उस पर भी उन्होंने अपने कुछ निर्णय दिए थे जिसे फॉलो किया गया था। हालांकि वहां के चीफ मिनिस्टर ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि इसे खत्म कराया जाए, लेकिन माना गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना मैं समझता हूं कि हमारे कर्तव्यों में शामिल है। तो अब देखते हैं कि ये पूरे का पूरी जो घटना हुई है ये घटना क्या रूप लेती है। तो यह आपको एक नया इशू उभरता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो मित्रों न्यूज में बस इतनी ही बात थी। एक न्यूज की मैं खासकर और चर्चा करना चाहूंगा जो कल के न्यूज से रिलेटेड है और अखबारों में भी इसके बारे में काफी आया है मित्रों, और वो खबर थी खासकर सैरोगेट मदर को लेकर। सैरोगेट मदर का मतलब है किराए की कोख, मतलब अगर किसी को बच्चा चाहिए तो आप अगर मान लीजिए किसी दंपत्ति को बच्चा नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रही है और उन्हें बच्चा चाहिए, तो एक तरीका तो ये है कि वो गोद ले लें, किसी के भी बच्चे को गोद ले लें, रिश्तेदारों को ले लें, बच्चों को ले लें, परिचितों के ले लें, जैसा कि पहले हुआ करता था, या इस तरह के कई आश्रम अनाथालय और इस तरह से बने हुए हैं बच्चों के जहां जाकर के आप एक प्रक्रिया के तहत बच्चे को गोद ले सकते हैं। दूसरी, अब मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि अब उसमें यह किया जाने लगा है कि वो एक मदर को ले लेते हैं जो जो उस उम्र में है कि जो बच्चे को जन्म दे सकती है, और उसके गर्भ में जो भ्रूण होते हैं वो प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, फिर वो भ्रूण उनके उस मां के गर्भ में पलता रहता है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उस बच्चे का जन्म हो जाता है, और जिसने वो गर्भ किराए में ली थी वो बच्चा उसको दे दिया जाता है, और बदले में वो जो मां है उसे जो भी राशि में तय होती है उसके किराए के रूप में वो उसे दे दी जाती है, जो कहा जाता है कि 25-30 हजार से लेकर के 5-6 लाख रुपए तक होती है। ये एक सरोगेट मदर बनने की एक प्रोसेस है। भारत में सन 2002 से ये शुरू हुआ और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते भारत में ये बहुत पॉपुलर हो गया है। महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, गुजरात, आंध्र प्रदेश और दिल्ली में भी अब इसकी बहुत संख्या बढ़ने लगी है। और सबसे बड़ी बात है कि विदेशी बहुत ज़्यादा इसको पसंद करने लगे, खासकर यूरोप, अमेरिका और कैनेडा के लोग। तो मित्र, इसके खिलाफ आवाज सी उठने लगी थी, क्योंकि देखिए कौन मां अपनी कोक किराए पर देगी, तो स्वाभाविक है कि ये गरीब परिवार की महिलाएं हैं। और इससे फिर दूसरे किस्म के अलग तरीके के संकट पैदा होने लगे थे। तो इसके खिलाफ जब आवाज उठी तो अभी कैबिनेट ने इसके खिलाफ एक निर्णय लिया है। कैबिनेट के सामने एक बिल था, सैरोगेसी रेगुलेशन बिल 2016, एक विधेयक अधिनियम उसके सामने आया है और उस पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है, यानी कि सरकार ने उसमें जो भी परिवर्तन किए हों उसे स्वीकार कर लिया है। अब देखते हैं कि आगे वो क्या होगा, क्योंकि अभी तो कैबिनेट ने ही उसे एक्सेप्ट किया है, फिर तो अभी वो पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट में उस पर बहस होगी और जब पार्लियामेंट पारित कर देगी तब जाकर के कहीं वो कानून बनेगा। तो मान करके चलिए कि अभी 10 महीने साल भर तो इसमें लग ही जाएंगे। तो इसकी जो खासियत है, अभी जो कैबिनेट ने एक्सेप्ट किया है उसकी ये है दोस्तों, इसमें प्रतिबंध नहीं लगाया गया सैरोगेट मदर पर कि इस प्रथा को बिल्कुल बंद ही कर दिया जाए, लेकिन कुछ प्रोविजंस कर दिए गए हैं, जैसे कि जो विवाहित महिला होगी वही सैरोगेट मदर बन पाएगी। दूसरी चीज की केवल अपने रिश्तेदारों के लिए ही वो सैरोगेट मदर हो पाएगी, जो लिविंग इन रिलेशंस में जो महिलाएं रह रही हैं वो सैरोगेट मदर नहीं बन पाएंगी। तो इस तरीके से कुछ इसके लिए प्रावधान किए गए हैं। तो निश्चित रूप से यह भी इश्यू अब आगे चलकर उठेगा और इसको लेकर के टाइम्स ऑफ इंडिया ने एडिटोरियल कमेंट भी लिखा है और आपको आगे भी इस पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ पढ़ने को मिलता रहेगा। तो मित्रों, ये सैरोगेट मदर के ऊपर था ये, तो इस पर मैं आपको कुछ क्लिपिंग्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ जो टाइम्स ऑफ इंडिया की क्लिपिंग्स हैं। मित्रों, अब मैं आता हूँ न्यूज़पेपर्स पर। दोस्तों, एक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग है, बिजनेस स्टैंडर्ड में सेवाओं के खराब स्तर से गरीब मध्य वर्ग का जीवन दुभर होता जा रहा है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर है, तो इसे आप प्रायोरिटी देंगे, इसे आप जरूर पढ़ेंगे। और ठीक इसी तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, एलिफेंट इन द रूम, ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसको लेकर के आर्टिकल लिखा गया है। और इसमें उन्होंने कहा कि टीचर को अकाउंटेबल बनाना बहुत जरूरी है, जब तक टीचर्स अकाउंटेबल नहीं होंगे तब तक हमारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकती। तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल ये है और बहुत संभव है कि इस पर मैं आपको हिंदी में कुछ सामग्री उपलब्ध कराऊं भी। मित्रों, एक आर्टिकल दैनिक जागरण में, आज के दैनिक जागरण में, खासकर भोपाल के और बाकी जगह कल भी ये छप चुका है, वैश्वीकरण पर खतरे के बादल, एक आर्टिकल मैंने लिखा था, ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप लोग इसे देख सकते हैं। चूंकि वैश्वीकरण जो ग्लोबलाइजेशन है वो हर साल प्रश्न के रूप में मेंस में तो कम से कम पूछा ही जाता है, तो हो सकता है कि ये आर्टिकल आपको कुछ दृष्टि दे सके। तो मित्रों, न्यूज़पेपर्स के बारे में बस इतना ही। मैं आज माफी चाहूंगा इस बात के लिए कि आज लाइफ मैनेजमेंट के लिए वक्त नहीं रह गया है और मैं नहीं चाहता कि दो चार पांच मिनट में लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से को मैं यूं ही निपटा दूं। मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं जो चार पांच मिनट का वक्त बचा हुआ है, पिछले जो सैटरडे को वीकली क्वेश्चन दिया गया था उसके बारे में दो बातें मैं कहना चाहूंगा। मित्रों, पहली बात तो यह कि जो मैंने कॉमन सेंस के बारे में आप लोगों से बात की थी, कुछ मेरे पास मेल आए हैं कि कैसे इस बार के प्री में 29 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कॉमन सेंस से रिलेटेड थे। याद रखिए कि जो कॉमन सेंस है वो मोस्ट अनकॉमन सेंस है, अगर आप उसको लॉजिकल तरीके से सोचेंगे तो आपकी गड़बड़ी हो जाएगी। वहां से तो आपको शब्द पकड़ने पड़ते हैं प्रश्नों के अंदर से और उसको लेकर के फटाफट अपने दिमाग में कोई चीज लानी पड़ती है। जैसे एक क्वेश्चन के बारे में मैंने कहा था जो गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के बारे में, कि चीफ मिनिस्टर के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो उसकी अध्यक्षता करने बैठेंगे और वो भी रेगुलर इंटरवेंशन मतलब इंटरवेल के आधार पर साल साल भर बाद। प्राधिकरण इतनी अस्थाई चीज नहीं होती है। मैं अपने कॉमन सेंस का उपयोग सिर्फ इसी आधार पर करते हुए उसके सही उत्तर तक पहुंच जाऊंगा, पहली बात। दूसरी बात कि कॉमन सेंस के आधार पर जो आप उत्तर निकालेंगे, जिस उत्तर को आप यस कहेंगे, याद रखिए कि उसमें जो सही और गलत होने की जो संभावना है वो 70-30% होती है। 70% संभावना रहती है कि सही हो जाएंगे और 30% संभावना रहती है गलत हो जाएंगे। तो आप उसे कोई बहुत इतना जबरदस्त तार्किक मान करके न चलें कि अगर मैंने उसमें कुछ निशान लगाया है तो वो सही ही होगा, उसके गलत होने की भी थोड़ी सी आशंका रहती है। मित्रों, अब मैं वीकली क्वेश्चन पर आता हूं। थोड़े से आपको हिंट दे देता हूं कि मैंने देखा था कि विश्वग्राम की जो अवधारणा है उसको खंडित करने वाली कोई आप 3 महत्वपूर्ण घटनाएं बताइए और फिर उसकी आप एनालिसिस कीजिए। मैं आपको इशारा केवल कर देता हूं क्योंकि वक्त ज्यादा के लिए इजाजत नहीं दे रहा है। 3 कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं, पहले देखिए कि जो विश्व में आतंकवाद चल रहा है, आप देख रहे हैं कि आतंकवाद के कारण खासकर जो यूरोप, जैसे फ्रांस को ले लीजिए, बहुत त्रस्त है ना उधर, और दूसरे राष्ट्रों में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। तो स्वाभाविक है कि जब आतंकवाद की घटनाएं होंगी तो अपने यहां वो सिक्योरिटी मेजरमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे और एक किसी पर्टिकुलर वर्ग के प्रति अपने दरवाजे भी बंद करके करने की सोचेंगे। जैसे अमेरिका में अभी जो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं ट्रंप, वो यही बात कह रहे हैं, है ना। दूसरे देशों ने भी अब अलग तरीके के सिक्योरिटी मेजर्स अपनाने शुरू कर दिए हैं। तो जब हम विश्व ग्राम की बात कर रहे हैं कि पूरा विश्व एक ही गांव होगा, वहीं आप कुछ लोगों को प्रतिबंधित कर रहे हैं, पहली घटना आतंकवाद। दूसरी घटना शरणार्थियों की घटना। शरणार्थियों की घटना के पीछे सिर्फ आतंकवाद ही नहीं है, बहुत से आप देशों के आपस के गृह युद्ध भी हैं। जैसे सीरिया को ले लीजिए, वहां गृह युद्ध चल रहे हैं। नो डाउट कि जो ये मध्य और खासकर पश्चिम एशिया के जो देश हैं वहां ISIS का लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उसकी वजह से लोग इन अपने देशों को छोड़कर के यूरोप की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। साल भर पहले की आपने घटनाएं देखी कि इनके माइग्रेशन से यूरोपीय देशों में समस्याएं पैदा हो रही हैं, तो अब यूरोपीय देश भी इन पर प्रतिबंध लगाने की सोच रहे हैं। तो फिर आप देख रहे हैं कि विश्वग्राम का मतलब क्या है, कि अगर गांव एक ही है तो आवागमन की छूट होनी चाहिए कि कहीं भी जाइए, कहीं भी रहिए, कहीं भी बसिए, मतलब एटलीस्ट ओपननेस तो हो। तो उस पर भी आप प्रतिबंध लगता हुआ अब आपको दिखाई दे रहा है। जो तीसरी जो घटना है मित्रों, उसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ब्रेक्जिट, कि ब्रेक्जिट ने अभी जो छोड़ा है खासकर जो यूरोपीय संघ को, ये बहुत बड़ा झटका है वर्ल्ड विलेज की अवधारणा के बारे में। मतलब वो 29 देश ही आपस में एक होकर के नहीं रह पा रहे, तो 200 देशों के बारे में आप क्या कहेंगे। तो इसका भी बहुत ज्यादा असर हो रहा है, दूसरे देश भी अब इसी तरह की विचारधारा से प्रेरित होने लगे हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, थोड़े से संदर्भ मैंने आपको बता दिए, आपको 200 शब्द ही तो लिखने हैं। तो मित्रों, ये पिछले बार की वीकली क्वेश्चंस की थोड़ी सी एनालिसिस थी। अब मैं आता हूं ईमेल पर। तो सभी ईमेल लिखने वाले अपने साथियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और कुछ उनमें से मित्रों के नाम हैं, देवलीना विश्वास, धीरज तिवारी इलाहाबाद से, विशाल कुमार, शिव कुमार भिवानी हरियाणा से, पीयूष कुमार सिंह छपरा बिहार से, चंद्र प्रकाश भारद्वाज, ओपी जाट अजमेर राजस्थान से, रितेश नायक महासमुंद छत्तीसगढ़ से, ज्योत्सना यादव उन्नाव उत्तर प्रदेश से, सौरभ वर्मा, शैलेंद्र कुमार BHU से, अरविंद महापात्र रायपुर छत्तीसगढ़ से, राहुल कुमार झा किशनगंज बिहार से, हीना जलाल न्यू दिल्ली से, और सुनील ठाकुर कुल्लू हिमाचल प्रदेश से। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और मित्रों, इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो गाइडेंस मैं यहीं समाप्त करने की आप सबसे इजाजत चाहता हूं, और साथ ही इस बात के लिए भी माफी चाहता हूं कि मुझे आज लाइफ मैनेजमेंट मिस करना पड़ा, उसके लिए वक्त नहीं रह गया कि मैं आप लोगों से उस विषय पर बातचीत कर सकूं। इसके लिए सच में मैं मन से थोड़ा सा आत्मग्लानि से थोड़ा सा पीड़ित भी हूं, मुझे तकलीफ भी हो रही है, और इसके लिए मैं अब एक ही काम कर सकता हूं कि आप लोगों से क्षमा मांगूं, और आप लोग भी सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं कि इसके लिए मुझे क्षमा कर दें। तो मित्रों, अब मैं आपके इन 2 दिनों के छुट्टियों की बहुत अच्छी कामना करता हूं कि ये छुट्टी के 2 दिन आपके बहुत बेहतर तरीके से बीते। सोमवार को फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।